بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس کی 47ویں، 48ویں اور 49ویں آیتوں کی تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں قاری قاسم رضیعی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज रविवार है, जून की 5, खुर्दाद माह की 15 और ज़िलक़ादा की 5 तारीख। कार्यक्रमों में पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके बाद कार्यक्रम अनमोल बातें पेश किया जाएगा, जिसके उपरांत राजनीतिक चर्चा होगी। फिर हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार सुनवाएंगे। सभा के अंत में 15 खुर्दात पर विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। ये थी रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान के गुप्तचर मंत्री ने कहा है कि देश की व्यवस्था हर धमकी का मुकाबला करने में सक्षम है। उत्तरी कोरिया ने फिर मिसाइल का परीक्षण किया है। नेटो व्यापक स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। बांग्लादेश में डिपो में आग लगने से 10 लोग जलकर मर गए। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी की 33वीं बरसी के मौके पर इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता द्वारा दिया गया भाषण इस समय विश्व मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पर व्यापक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई के हवाले से ये लिखा है कि इस्लामी गणराज्य में जनता बहुत अहम तत्व है और दुश्मन राष्ट्र को कभी भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकेगा। ईरानी सरकार और लोगों को आमने सामने लाने में दुश्मन के सारे अनुमान गलत सिद्ध हुए हैं। वहीं स्विस इन्फो न्यूज़ चैनल ने भी अशांति और मतभेद को हवा देने पर आधारित ईरान की दुश्मन ताकतों के प्रयास के बारे में इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के बयानों को प्रसारित किया। US वेबसाइट ने भी इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के हवाले से ये लिखा है कि आज शत्रु की सबसे बड़ी इच्छा ईरान में इस्लामी व्यवस्था और जनता को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देने की है, लेकिन दुश्मन के सभी अंदाजे पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं। ईरान के गुप्तचर मंत्री ने बताया है कि हमारा देश शत्रु की क्षमा कीजिएगा ईरान के गुप्तचर मंत्री हुज्जतुल इस्लाम सैयद इस्माइल खतीब ने बताया है कि हमारा शत्रु देश की आंतरिक मजबूती से डरता है। उन्होंने रविवार को IRGC की थल सेना के कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय हमारे शत्रु अपनी समस्त संभावनाओं के साथ ईरान के विरुद्ध खड़े हैं। उन्होंने कहा कि शत्रु को इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है कि ईरान की व्यवस्था के भीतर हर प्रकार की धमकी का मुकाबला करने की क्षमता पाई जाती है। ایران کے گپتچر منتری کے انوسار امریکہ کی سرکشا ایجنسیوں پر جتنا دھن خرچ کیا جاتا ہے وہ ایران کے وارشک بجٹ سے بھی ادھک ہے۔ وہ لوگ اسلامی گڑتنتر ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی ساری سمبھاوناؤں کا پریوگ کر رہے ہیں۔ یہ راشٹر کا ساہس اور ہمت ہے جس نے اسلامی کرانتی کو سرکشت کر رکھا ہے۔ سید اسماعیل خطیب نے یہ بھی کہا کہ ورتمان سمے میں ہمارا دشمن سماجک پرستھتیوں کو خراب کر کے لوگوں کے من کو ایران سے گھرنت کر رہا ہے۔ ایران کے ودیش منترالے نے تین ایرانی دویپوں کے سمبندھ میں فارس کی کھاڑی سہیوگ پریشد کے ایک بار پھر غیر ذمہ دارانہ بیان پر کڑی پرتکریا دکھائی ہے۔ ودیش منترالے کا کہنا ہے کہ تینوں دویپ ہمیشہ سے ہی ایران کے تھے اور ہمیشہ ایران کے ہی رہیں گے۔ ودیش منترالے کے پروکتا سعید خطیب زادے نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بات بل دے کر کہی ہے کہ فارس کی کھاڑی میں تین ایرانی دویپ ایران کا ابھن انگ ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو ایران سے الگ کرنے کی شکتی نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں دویپ ایران کے تھے اور ہمیشہ ایران کے رہیں گے۔ جاپانی کوسٹ گارڈ نے رکشا منترالے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتری کوریا نے بیلسٹک میسائل لانچ کی تھی۔ اتر کوریا کا یہ پرکشیپن دکشنی کوریا اور امریکہ دوارا بڑے پیمانے پر تین دیوسی ابھیاس کے بعد ہوا ہے۔ اتری کوریا نے رویوار کو اپنے پوروی تٹ سے کم ایک بیلسٹک میسائل کو لانچ کیا۔ سیول کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے رویوار کی صبح کو بتایا ہے کہ اتری کوریا کے پوروی ساگر میں ایک اگیات بیلسٹک میزائل داغی گئی۔ دکشن کوریا کی سینا نے کہا ہے کہ سیول اور واشنگٹن نے چار سال سے ادھک سمے میں امریکی ویمان واہک پوت کو شامل کرنے والے اپنے پہلے سنیکت ابھیاس کو انجام دیا ہے۔ گمبھیر آرتھک پرتبندھوں کو جھیل رہے پیونگ یانگ نے اس سال اپنے ہتھیار کارکرم کو اپ گریڈ کرنے پر دو گنا کام شروع کر دیا ہے۔ سنیکت سینیہ ابھیاس کے لیے نیٹو کے 40 سدسیہ دیشوں نے اپنے آدھونک ہتھیار سویڈن بھیج دیے ہیں۔ اتری اٹلانٹک سندھی سنگٹھن نیٹو کے سدسیہ دیش ایک سنیکت سینیہ ابھیاس کرنے جا رہے ہیں۔ سویڈن کے رکشا منتری نے پترکاروں کو یہ بتایا ہے کہ نیٹو کے سدسیہ دیشوں نے لگ بھگ 40 یدھ پوت شنیوار کو سویڈن کی راجدھانی بھیجے ہیں۔ یہ دیش سنیکت روپ سے کل سے سینیہ ابھیاس کرنے جا رہے ہیں۔ بالٹک ساگر میں کیے جانے والے سنیکت سینیہ ابھیاس میں سویڈن اور فن لینڈ بھی بھاگ لیں گے۔ سویڈن اور فن لینڈ نیٹو کے نئے سہیوگیوں کے روپ میں اس سنیکت سینیہ ابھیاس میں بھاگ لینے جا رہے ہیں۔ ان دونوں دیشوں نے حال ہی میں نیٹو میں سدسیتا حاصل کرنے کی درخواست کی تھی۔ اسی بیچ روس کے رکشا منترالے نے ایک بیان جاری کر کے گھوشنا کی ہے کہ ان کے دیش کے یدھک ویمانوں نے بھی 40 یدھ پوتوں تتھا 20 یدھک ویمانوں کی سہایتا سے ایک سینیہ ابھیاس آرمبھ کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک نجی کنٹینر ڈپو میں وسفوٹ کے کارن لگی بھیشن آگ میں کم سے کم 48 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اس وسفوٹ میں 450 سے ادھک لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ادھیکاریوں نے رویوار کو یہ جانکاری دی ہے۔ دکشن پوروی بنگلہ دیش میں ایک ڈپو میں ہوئے دھماکوں میں 48 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ دا ڈیلی سماچار پتر نے بتایا کہ چٹگاؤں کے سیتا کنڈ اپ ضلع میں کدمرول کھیتر استھت بی ایم کنٹینر ڈپو میں شنیوار رات آگ لگ گئی۔ ڈپو میں لگی آگ اور اس کے بعد ہوئے وسفوٹ میں کم سے کم 44 یا 48 لوگوں کی موت ہو گئی۔ پولیس ایوم دمکل کرمیوں سہت سینکڑوں لوگ اس میں جھلس کر مر گئے۔ ڈھاکہ ٹریبیونل نے ریڈ کریسنٹ کے میں سواستھ ایوم سیوا وبھاگ کے پرمکھ کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس گھٹنا میں 400 ادھک سے لوگ گھائل ہوئے ہیں، جن میں کم سے کم 350 لوگ سی ایم سی ایچ میں بھرتی ہیں۔ انہوں نے مرتکوں کی سنکھیا میں وردھی کی آشنکا جتائی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپمان کرنے والی بھاجپا نے اپنی پروکتا کو باہر کا راستہ دکھایا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کی پروکتا نوپور شرما کو بھاجپا کی پرارمبھک سدسیتا سے 6 ورشوں کے لیے نلمبت کر دیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وادت بیان دینے کے بعد नूपुर शर्मा के विरुद्ध उनकी ही पार्टी ने ये फैसला लिया है। नूपुर शर्मा द्वारा हजरत मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद मुसलमानों की ओर से किए जा रहे विरोध के कारण भाजपा को अब बैकफुट पर आना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रवक्ता के अपमानजनक बयान के बाद ये कहा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के पूजनीय शख्स का अपमान स्वीकार नहीं करती। म्यांमार में जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों को वहां की सेना फांसी देने का मन बना चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इस संभावना पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है कि म्यांमार के राजनीतिक बंदियों को मौत की सजा दी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने म्यांमार की सैनिक सरकार से इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है कि राजनीतिक बंदियों को फांसी दी जानी चाहिए। ये वे लोग हैं जिनको म्यांमार में सेना द्वारा सत्ता हथियाने के दौरान बंद करके जेलों में डाल दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ऐलान किया गया है कि म्यांमार की सैनिक सरकार द्वारा राजनीतिक बंदियों को मौत की सजा दिए जाने के फैसले का हम विरोध करते हैं। ये स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का हनन है। रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि 1 फरवरी 2021 में म्यांमार में होने वाले सैन्य विद्रोह के बाद से अब तक कम से कम 113 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। अमेरिका का कहना है कि पूरे विश्व में भूख का संकट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के बारे में अमेरिका के विशेष दूत ने बताया है कि वर्तमान समय में विश्व में कम से कम 200 मिलियन लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। कैरी वॉलर ने विश्व में खाद्य आपूर्ति के बारे में कहा है कि यूक्रेन युद्ध ने कम से कम 40 मिलियन लोगों को भुखमरी में फंसा दिया है। इस प्रकार अब विश्व में 200 मिलियन लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
अनमोल बातें
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम सुप्रीम लीडर की नज़र में इमाम खुमैनी के व्यक्तित्व और तार्किक धर्म इस्लाम के बारे में चर्चा करेंगे। सैयद मीसम का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के व्यक्तित्व की विशेषता ये थी कि उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इमाम खुमैनी खुद मैदान में उतरे और बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने केवल बयान नहीं दिए और न ही सिर्फ आदेश दिए। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इमाम खुमैनी व्यक्तिगत रूप से खुद भी परिवर्तन के इच्छुक थे और खुद भी परिवर्तन के जनक थे। परिवर्तन पैदा करने में उनकी भूमिका केवल एक गुरु, टीचर या उस्ताद की नहीं थी, बल्कि उनकी भूमिका ऑपरेशन में एक कमांडर और पूरे वास्तविक अर्थों में एक नेता की थी। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उन्होंने अपने जमाने में अपनी शिक्षा और प्रशिक्षा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़े परिवर्तन अंजाम दिए, जिनमें से कुछ की ओर आज मैं इशारा करूंगा। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि प्राचीन काल से ही इस महापुरुष में परिवर्तन की भावना मौजूद रही है। ये नहीं था कि 1962 में इस्लामी क्रांति के आरंभ से ये उनमें भावना पैदा हो गई हो, नहीं, ऐसा नहीं था। वो युवा काल से ही एक परिवर्तन के इच्छुक जवान थे और इसकी निशानी वो जीवनी और नोट है जिसे उन्होंने जवानी के जमाने में लगभग अपनी उम्र के 30वें दशक में स्वर्गीय वजीरी यजदी के कॉपी में लिखा था और स्वर्गीय वजीरी ने वही कॉपी मुझे भी दिखाई थी। اسلامی کرانتی کے ورشت نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اسلام کو تارکیک دھرم قرار دیتے ہیں اور پویتر قرآن کو ایشوریہ نشانیوں کو چنتن منن کرنے کا آدیش و نمنترن دینے والی کتاب قرار دیتے ہیں۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ اسلام دھرم پر اس بات کا آروپ لگانا کہ وہ بدھی سے دور ہے اور بدھی سے اس کا کوئی ناتا نہیں ہے، یہ چیز اسی طرح اتیاچارپورن ہے جس طرح ایک اسپشٹ چیز کا انکار کیا جانا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی سورج کے فائدے یا دھوپ کے لابھ کا انکار کرے۔ اسلامی کرانتی کے ورشت نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کہتے ہیں کہ دنیا کی کون سی ایشوریہ کتاب یا آسمانی پستک میں اتنی جگہ سمبودھکوں کو چنتن منن کرنے کا آدیش دیا گیا ہے۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ دنیا کی کون سی آسمانی کتاب میں سب سے پہلے سمبودھن میں گیان، قلم اور شکشا پر دھیان دیا گیا ہے اور ان سب چیزوں کو مہتو دیا گیا ہے۔ آج پشچمی دنیا اگر گیان وگیان میں پرگتی کر رہی ہے تو کون اتیاسکار یا آوشکارک ہے جو انصاف سے اس بات کی پشتی نہ کرے کہ ان سب چیزوں کو اسلامی جگہ سے لیا گیا ہے۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کہتے ہیں کہ مدھیہ یوگین کال جو پشچمی دنیا کا اندھکارمئی کال اور اندھیرے سے بھرا ہوا یگ تھا، اس کال میں اسلامی جگت میں گیان وگیان وچار درشن شاستر کا بول بالا اور چرچا تھی۔ اس کال میں ابن سینا، فارابی اور ان جیسے لوگوں کے ناموں کا چرچا تھا۔ دوستو، کاریکرم کا سمے ہی سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔ دوستو، کاریکرم راجنیتک چرچا لے کر میں سید میسم آپ کی سیوا میں حاضر ہوں۔ ترکی اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ دشمنی بھری نیتی کو آگے بڑھا رہا ہے، جائزہ لے رہے ہیں رویش زیدی۔
آتنکواد سے مقابلے کے بہانے ترکی اپنے پڑوسی دیشوں کے خلاف سینی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترک راشٹرپتی رجب طیب اردوغان اپنی اس غلط ودیش نیتی کو جائز بھی ٹھہرا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر سیریا کے خلاف سینی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سیریا کا اتری علاقہ ترکی کے لیے بفر زون ہے اور انہیں یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی اس علاقے میں انکارا سرکار کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے۔ اردوغان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انکارا نے آپریشن یوروفریٹس شیلڈ، اولیو برانچ، فاؤنٹین آف پیس اور لاک کلاک جیسے سین آپریشنوں کے ذریعے ترکی کی دکشنی سیما پر آتنکوادی کراسنگ کی یوجنا کو نشٹ کر دیا ہے۔ نسندیہ ترک راشٹرپتی کے یہ دعوے اپنے دو پڑوسی دیشوں کی بھومی پر قبضے کو نہ کیول کسی طرح صحیح ٹھہراتے ہیں بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھوش میں سیریا سنکٹ ادھک گہرا سکتا ہے، کیونکہ اگر سیریا کی سین شکتی میں وردھی ہوتی ہے تو دمشق بھی ترکی سے لگی سیما کو اپنے لیے بفر زون گھوشت کرنے کا پریاس کرے گا۔ دراصل کہا جا سکتا ہے کہ اس غلط نیتی پر یہی ویرام لگنا چاہیے، کیونکہ اس کا جاری رہنا پورے علاقے کی سرکشا کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اردوغان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ترکی ان سبھی دیشوں پر حملہ کر سکتا ہے کہ جو کمزور ہیں اور اپنی رکشا نہیں کر سکتے۔ اردوغان کی دھمکیوں کے جواب میں سیریا کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ اتری سیریا میں بفر زون استھاپت کرنے کی ترک راشٹرپتی کی کھوکھلی دھمکی اس دشمنی کا حصہ ہے جو انکارا پچھلے کئی ورشوں سے سیریائی راشٹر کے خلاف پال رہا ہے، اور اس نے اپنے پڑوسی دیش کی سمپربھوتا کو داؤں پر لگانے کی قسم کھا رکھی ہے، کیونکہ ترکی 2011 سے ہی سیریا سنکٹ کا ایک بھاگ رہا ہے اور وہ سیریا کو بانٹنے اور اس کے ایک بھاگ پر قبضہ کرنے کی اپنی یوجنا نہیں چھوڑی ہے۔ حالانکہ یہ یوجنا صرف ترکی کی یوجنا ہی نہیں ہے بلکہ اسرائیل اور امریکہ بھی اسی ادیش کو پراپت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ اسپشٹ ہے کہ انکارا کچھ شیتری اور ویشوک شکتیوں کا سمرتھن حاصل کرنے کے لیے ان کی اچھا پوری کرنے اور ان کی سیوا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خود اردوغان کے دل میں اپنے پڑوسی دیشوں کو لے کر ایک دویش ہے جس سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔
اسرائیل کے پردھان منتری نے زائونی شاسن کے آنترک پتن کی چیتاونی دی ہے۔ جائزہ لے رہے ہیں قائم رضوی۔
اسرائیلی پردھان منتری نفتالی بینت نے آنترک روپ سے زائونی شاسن کے پتن کی چیتاونی دی ہے۔ اسرائیل پروپیگنڈے کے استر پر ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور سامان ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی چنوتی ہے تو وہ صرف ایران کا پرمانو کارکرم ہے۔ اگر وہ بھی اس کی اچھا کے انوسار حل ہو جائے تو پھر اس کے سامنے کوئی گمبھیر چنوتی باقی نہیں رہے گی۔ حالانکہ موجودہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ اس شاسن کی اصلی چنوتی خود اس کے بھیتر ہے نہ کہ باہر سے۔ جہاں تک ایران کے پرمانو کارکرم کا سوال ہے، وہ اسے اس لیے سب سے بڑا مدعا بنا کر پیش کرنے کا پریاس کرتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کا دھیان اس کی آنترک چنوتیوں سے ہٹ جائے۔ دوسری اور وہ ایران کے مدعے کو اس لیے بھی سرخیوں میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ فارس کی کھاڑی کے عرب دیشوں کو ڈرا کر انہیں اپنے پالے میں لایا جا سکے اور ان کے ساتھ سمبندھوں کو سامان بنانے کے سمجھوتے کیے جا سکیں۔ یہ کام سامان استھتی میں سمبھو نہیں ہے۔ بینٹ کی گٹھبندھن سرکار کے لیے پورو زائونی پردھان منتری نتنیاہو گمبھیر چنوتی پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی سرکار کو بچانے کے لیے بینٹ ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ وہ ایسی باتیں زبان پر لا رہے ہیں کہ اگر یہی بات کوئی اور کہتا تو اس پر یہودی ویرودھی ہونے کے آروپ مڑ دیے جاتے۔ بینٹ نے کہا ہے کہ ہم پہلے بھی آنترک لڑائیوں کی وجہ سے دو بار بٹ چکے ہیں اور آج پھر سے تیسری بار ہم وبھاجن کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ہم سبھی کی کڑی پریکشا جاری ہے، لیکن کیا ہم اسرائیل کو سرکشت رکھ سکتے ہیں؟ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ بینت کے دھر ویرودھی نتنیاہو کا بھی کچھ ایسا ہی ماننا ہے۔ بنیامین نتنیاہو نے 2017 میں یہودیوں کے سوکوت سماروہ کے افسر پر یہ کہا تھا کہ میں بھرپور پریاس کروں گا تاکہ اسرائیل اپنی 100ویں ورشگاٹھ منا سکے، لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اتہاس گواہ ہے کہ یہودیوں کا کوئی بھی شاسن 80 سال سے زیادہ تک نہیں چل پایا ہے۔ اسرائیل کے سبھی نیتاؤں، ادھیکاریوں اور یہاں تک کہ میڈیا میں اس چنتا کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہارتس کے پترکار نے لکھا تھا کہ اسرائیل اپنی انتم سانسیں لے رہا ہے۔ اب یہاں پر جیون باقی نہیں بچا ہے بلکہ سین فرانسسکو یا برلن کا رخ کرنا پڑے گا۔ سمبھو ہے کہ ہم ایک ایسے بندو پر پہنچ گئے ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے اور ہمارے پاس قبضہ ختم کرنے تتھا اویدھ بستیوں کے نرماڑ کو روکنے کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ نہیں بچا ہے۔ اسرائیل پچھلے کئی ورشوں سے آنترک سنکٹ سے جوجھ رہا ہے۔ اسرائیل کی آبادی میں کٹرپنتھیوں کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان پر ادھک دھیان دیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہر سرکار کو ہائی جیک کر لیتے ہیں اور اسے پتن کی کگار تک لے جاتے ہیں۔ پرینام سوروپ اسرائیلیوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے اور وہ بھیتر اور باہر سے زائونی شاسن کو کمزور ہوتے ہوئے اور بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت پرشاست جموں کشمیر میں بھی امام خمینی کی برسی منائی گئی ہے۔ بیورا دے رہے ہیں شری نگر سے سپتے حسن۔
وشو بھر کے اسلامی جنتا کے ساتھ ساتھ بھارت پرشاست جموں کشمیر میں بھی امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی 33ویں برسی کے حوالے سے وبھن سباہیں آیوجت ہوئی جس میں انہیں شردانجلی ارپت کی گئی۔ اس حوالے سے آج مجلس علماء امام جموں کشمیر نے ایک سبھا کا آیوجن سری نگر کے نکٹوردی چھیتر گنڈی ہسبٹ میں کیا تھا۔ اس میں استھانیہ اور अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंटेलेक्चुअल्स ने भी भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। इंटेलेक्चुअल ने जहां विश्वभर के मुसलमानों की समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एकता में करार दिया, वहीं पर इन इंटेलेक्चुअल्स और धार्मिक नेताओं ने इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी पर भी विस्तार के साथ रोशनी डाली। धार्मिक नेताओं ने कहा कि इमाम खुमैनी ने जिस इनकलाब की बुनियाद डाली उसने विश्व के तमाम मजलूमों को जालिम के सामने खड़ा होने का सलीका दिया। उलमा ने कहा कि इनकलाबी इस्लामी ने जहां मजलूमों को एक आवाज़ दी वहीं पर अब इस्तकबार आखिरी सांसें ले रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ इसी रेवोल्यूशन की देन है।
और जो नियामत खुदा ने इंसान को अता की है वो किसी मखलूक को अता नहीं की।
इस अवसर पर उलमा ने इस अवसर पर धार्मिक नेताओं ने रेडियो तेहरान के साथ वार्ता करते हुए कहा,
देखिए आज बानिए इनकलाब इस्लामी रहबर कबीर बुत शिकन हजरत इमाम खुमैनी अलैहि रहमत की 35वें बरसी दुनिया भर में मनाई जा रही है।
उधर उत्तरी जिला बारामूला के वतरगाम में परवानी विलायत ने इस हवाले से एक सभा का आयोजन किया था, जबकि श्रीनगर के मीर बहरी में एजुकेशन ट्रस्ट ने भी एक सभा का आयोजन किया था। इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है। दक्षिणी कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच एक मुठभेड़ में घाटी में सक्रिय छापामार संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक वरिष्ठ सदस्य हताहत हुआ, जबकि इस मुठभेड़ में एक नागरिक और 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल सुरक्षाकर्मियों में से एक की स्थिति नाजुक बताई जाती है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम अनमोल बातें, और उसके बाद आप सुनेंगे कुरान ईश्वर चमत्कार, और अंत में हम आपको सुनाएंगे एक विशेष कार्यक्रम।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह ताहा की 61वीं और 62वीं आयतों की तिलावत सुने।
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
موسى نے ان لوگوں سے کہا دھکار ہو تم پر झूठ गढ़कर उसे ईश्वर पर न थोपो कि वो तुम्हें अपने एक कड़े दंड से विनष्ट कर देगा, और जिस किसी ने भी ईश्वर पर झूठ थोपा वो घाटे में रहा। तो अपने मामले में फिरौन व उसके लोगों के बीच बहुत मतभेद हुआ और उन्होंने चुपके चुपके एक दूसरे से कानाफूसी की।
इससे पहले हमने कहा कि फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारों के मुकाबले में जादूगरों को बुलाया ताकि अपने विचार में हजरत मूसा को अपमानित कर सके। किंतु उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ का कार्यक्रम सब लोगों के सामने हो, ताकि फिरौन और उसके जादूगरों को लोगों की आंखों के सामने पराजित करके अपनी सत्यता को सिद्ध कर दें, और आजकल की भाषा में इस धमकी को अपने और अपने धर्म के परिचय हेतु एक अवसर के रूप में प्रयोग करें।
जब निर्धारित दिन सभी लोग निर्धारित स्थान पर एकत्रित हो गए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों और फिरौन के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी को भी ईश्वर का समकक्ष ठहराना और उसके चमत्कारों को जादू टोना बताना ईश्वर पर लांछन लगाने जैसा है, जो तबाही और विनाश का कारण बनता है, और इसके परिणाम में पराजय और घाटे के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गया, किंतु वे अपनी ये बातें दूसरों से छिपकर अत्यंत धीमे स्वर में कर रहे थे, ताकि लोग उनके मतभेद को न समझ सकें।
रोचक बात यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जादूगरों को चुनौती देने के स्थान पर उन्हें मूर्तियों की पूजा छोड़कर अनन्य ईश्वर की छाया में आने का निमंत्रण दिया। उनका यही व्यवहार, जो उनकी सच्चाई का चिन्ह था, जादूगरों के बीच मतभेद का कारण बन गया, और उनमें से कई ने यह सोचा कि मूसा वास्तव में ईश्वर के पैगंबर हो सकते हैं और उनकी धमकियां व्यवहारिक हो सकती हैं।
इन आयतों से हमने सीखा कि किसी के संबंध में झूठ बोलकर और उस पर आरोप लगाकर कभी भी हम वांछित परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। इस स्थिति में पराजय और निराशा हमारी प्रतीक्षा में होगी।
शत्रुओं के बीच भी मतभेद होता है, किंतु वे अपने मतभेदों को ईमान वालों की दृष्टि से छिपाने का प्रयास करते हैं।
आइए अब सूरह ताहा की 63वीं और 64वीं आयतों की तिलावत सुने।
لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
فرعون کے لوگوں نے کہا، نشچے ہی یہ دونوں جادوگر ہیں और चाहते हैं कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल बाहर करें और तुम्हारे उत्तम मार्ग को तबाह कर दें। तो हे जादूगरों, तुम सब मिलकर अपने उपाय जुटा लो, इन दोनों के मुकाबले में फिर पंक्तिबद्ध होकर आओ, और जो आज विजयी रहा निश्चित रूप से वही सफल हुआ।
फिरौन के कुछ लोगों और कुछ जादूगरों पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों के प्रभाव के बाद फिरौन के लोगों ने उनकी बातों के प्रभाव को रोकने के लिए हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम पर दो प्रकार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे अपनी इन बातों व कार्यों से सत्ता हाथ में लेना एवं तुम्हें इस धरती से बाहर निकालकर बनी इसराइल को सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी प्रकार वे चाहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों के धर्म को, जो अत्यंत उच्च व ठोस धर्म है, समाप्त करके तुम्हें अपने धर्म में ले आएं।
स्वाभाविक है कि साधारण लोग इन दोनों ही बातों को स्वीकार नहीं करेंगे और इस पर प्रतिक्रिया जताएंगे। दूसरी ओर उन्होंने जादूगरों से कहा कि हर प्रकार के मतभेद से दूर रहो और अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करके दृढ़ता के साथ मूसा और हारून के समक्ष डट जाओ कि आज जो इस मैदान में जीतेगा वही श्रेष्ठ होगा।
इन आयतों से हमने सीखा कि अत्याचारी शासक लोगों को ईश्वर के प्रिय बंदों के विरुद्ध उकसाने के लिए उन्हें सत्ता लोलुप एवं राष्ट्रीय संस्कृति व संस्कारों का विरोधी दर्शाने का प्रयास करते हैं।
सत्य से मुकाबले के लिए शत्रु अपनी पूरी शक्ति और संभावनाओं का प्रयोग करते हैं और इस मार्ग में एकजुट रहते हैं। यदि सत्य के अनुयायी एकजुट नहीं होंगे तो पराजित हो जाएंगे।
आइए अब सूरह ताहा की 65वीं और 66वीं आयतों की तिलावत सुने।
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
جادوگروں نے کہا हे मूसा, तुम अपना जादू फेंकते हो या हम इसमें पहले फेंकने वालों में से हो जाएं? मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही लोग फेंको। फिर सहसा ही उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के बल पर मूसा को दौड़ती हुई प्रतीत हुईं।
इस मैदान में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात का मार्ग प्रशस्त किया कि विरोधियों के पास जो कुछ भी है वे मैदान में ले आए ताकि उनके पास जादू के लिए कोई चीज बाकी न बचे। उन्होंने लोगों की आंखों के सामने अपने जादू टोने के बल पर कुछ ऐसा किया कि आम लोगों के साथ ही हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम को भी ऐसा आभास हुआ कि जादूगरों द्वारा जमीन पर फेंकी गई रस्सियों और लाठियों में जान पड़ गई है और वे रेंगने लगी हैं। आगे की घटना का वर्णन अगले कार्यक्रम में किया जाएगा।
इन आयतों से हमने सीखा कि सत्य की रक्षा के मार्ग में पहले विरोधियों को इस बात का अवसर देना चाहिए कि वे अपनी शंकाओं को प्रस्तुत करें और फिर ठोस व तर्क संगत उत्तर द्वारा उन्हें पराजित कर देना चाहिए।
जादू टोने से चीजों की वास्तविकता नहीं बदलती बल्कि इससे लोगों की दृष्टि व सोच प्रभावित होती है और वे वस्तुओं को किसी दूसरे रूप में देखने लगते हैं।
दोस्तों, 15 खुरदाद अर्थात 5 जून के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरिया मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, संघर्ष एक ऐसी चीज है जिसमें धैर्य, प्रतिरोध और उसका जारी रहना बहुत जरूरी है। कोई भी संघर्ष धैर्य व प्रतिरोध के बिना सफल नहीं हो सकता। जिस इंसान का उद्देश्य जितना बड़ा होता है उसे उतना ही अधिक धैर्य व संयम से काम लेना पड़ता है। इंसान को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो इंसान अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है वो कठिनाइयों व समस्याओं से विचलित नहीं होता और उसकी नज़र सदैव गंतव्य पर होती है। 15 खुरदाद 1342 हिजरी शमसी अर्थात 5 जून 1963 को ईरान में जो घटना घटी वो शाह की अत्याचारी सरकार के खिलाफ ईरानी राष्ट्र के संघर्ष के इतिहास में अमर हो गई। उस समय ईरान में जो राजनीतिक हालात थे उनके दृष्टिगत तीन पहलुओं से 15 खुरदाद की घटना महत्वपूर्ण है। पहला यह कि इस ऐतिहासिक घटना का संबंध ईरान के इस्लामी क्रांति की पहले की घटनाओं से है। जिस चीज ने 15 खुरदाद की घटना की भूमि प्रशस्त की वो जन विरोधी कैपिटुलेशन का पारित होना था। इस कानून के अनुसार अमेरिकी जो भी अपराध ईरान में करती उन पर ईरान में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
15 खुरदाद की घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये था कि इससे ये स्पष्ट हो गया था कि ईरानी जनता की क्रांति का आधार इस्लाम था, जिसका उससे पहले कोई इतिहास नहीं था। ईरान की इस्लामी व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खोमेनी की एक विशेषता ये थी कि वो साम्राज्यवाद के खिलाफ खुलकर बोलते थे। उन्होंने 15 खुरदाद की घटना से 3 दिन पहले आशुरा के उपलक्ष्य में पवित्र नगर कुम के धार्मिक शिक्षा केंद्र फैजिया में ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने अमरीका, इसराइल और शाह की अत्याचारी सरकार की नीतियों और उनके षड्यंत्रों की पोल खोली थी।
उनके इस भाषण पर शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और शाही सरकार के सुरक्षा बलों ने 15 खुर्दाद 1342 हिजरी शमसी अर्थात 5 जून 1963 की सुबह में पवित्र नगर कुम में स्थित इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तेहरान स्थानांतरित करके उन्हें जेल में बंद कर दिया। जब इमाम खुमैनी के गिरफ्तार होने की खबर ईरानी शहरों में फैली तो कुम, तेहरान, वरामीन, मशहद, इस्फहान और शिराज जैसे नगरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन जारी रहे यहाँ तक कि इमाम खुमैनी को दोबारा गिरफ्तार करके 15 वर्षों के लिए देश से निष्कासित कर दिया गया।
शाह ने इमाम खुमैनी को सबसे पहले तुर्की निष्कासित किया, फिर वहां से उन्हें कुछ समय के बाद इराक के पवित्र नगर नजफ और फिर वहां से फ्रांस निष्कासित कर दिया। घुटन और दमन के वातावरण में स्वर्गीय इमाम खुमैनी विश्व के वर्चस्ववादियों और साम्राज्यवादियों को संबोधित करके कहते थे, शक्तियों, बड़ी शक्तियों और उनके नौकरों व पिछलग्गों को जान लेना चाहिए कि अगर खुमैनी अकेले भी रह गए तब भी अत्याचार, कुफ्र और आने के शुरुआत से संघर्ष का उनका जो रास्ता है उसे वो बाकी रखेंगे और महान ईश्वर की मदद से इस्लामी जगत के संघर्षकर्ताओं के रहेंगे और नंगे पांव रहकर उन तानाशाहों की आराम की नींद को हराम कर देंगे जो अत्याचारों के जारी व बाकी रहने पर आग्रह कर रहे हैं।
स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि हमारा दायित्व है कि हम अन्याय व अत्याचार के मुकाबले में डट जाएं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अत्याचार से संघर्ष करें, उसका विरोध करें। हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि कहीं हम नाकाम न हो जाएं। पहली बात तो यह है कि हम विफल व नाकाम नहीं होंगे, ईश्वर हमारे साथ है। और दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि हम विफल हो जाएंगे तो ये विदित विफलता व नाकामी होगी और आध्यात्मिक रूप से हम विफल नहीं होंगे और आध्यात्मिक सफलता इस्लाम के साथ है, मुसलमानों के साथ है और हमारे साथ है।
15 खुर्दाद की घटना का एक महत्वपूर्ण संदेश अत्याचारियों के मुकाबले में न तो नतमस्तक होना चाहिए और न ही साम्राज्यवादियों की धौंस धमकी से प्रभावित होना चाहिए। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखते हुए इमाम खुमैनी ने फरमाया था, 15 खुर्दाद इस्लाम और मुसलमानों के पुनर्जन्म का दिन है। 15 खुर्दाद के दिन को याद रखना मानवीय मूल्यों को याद रखने का दिन है। 15 खुर्दाद का दिन प्रतिरोध का वो दिन है जिसने शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार का अंत कर दिया। 15 खुर्दाद को शहीद होने वाले शूरवीर जवानों, मर्दों और महिलाओं ने अपने पावन लहू से तानाशाही की बुनियादों को धराशायी व ध्वस्त कर दिया। 15 खुर्दाद को शहीद होने वालों ने भावी पीढ़ियों को प्रतिरोध का रास्ता दिखा दिया और साथ ही उन्होंने असंभव प्रतीत होने वाली चीज को संभव करके दिखा दिया।
ईरानी संविधान में 15 खुर्दाद की घटना का उल्लेख इस्लामी क्रांति के इतिहास में भुलाई न जाने वाली घटना के रूप में किया गया है और इस दिन के महत्व के बारे में लिखा है, स्वर्गीय इमाम खुमैनी द्वारा अमेरिकी षड्यंत्रों पर आपत्ति ईरानी राष्ट्र के एकजुट होने का कारण बनी और वो यानी 15 खुर्दाद ईरान की इस्लामी क्रांति का आरंभिक बिंदु था। यद्यपि स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को ईरान से निष्कासित कर दिया गया था, परंतु जनता उनके दिशा निर्देशन की छत्र छाया में 15 खुर्दाद का आंदोलन आगे बढ़ा रही थी और शाह की अत्याचारी सरकार ने बहुत से लोगों की हत्या कर दी, फांसी दे दी और जेल में डाल दिया। परमाणु से पता चला कि 15 खुर्दाद के दमन में शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार अकेली नहीं थी बल्कि अमेरिकी और जानवी शासन ने भी उसका साथ दिया। दूसरे शब्दों में शाह के अलावा अमेरिका और इसराइल ने भी ईरानी जनता का खून बहाने में संकोच से काम नहीं लिया। शाह की तानाशाही सरकार ये सोच रही थी कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के निष्कासित कर देने से वो क्रांति और क्रांतिकारियों का दमन कर देगी, परंतु जो हुआ वो शाह की अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत हुआ। स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपने विचारों से ईरानी जनता को जागरूक बना रहे थे और ईरानी जनता व लोग उनके विचारों और आदेशों को व्यवहारिक बनाने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। 15 खुर्दाद से पहले जो भी आंदोलन ईरान में हुए थे, यद्यपि उनमें धार्मिक और राजनीतिक नेता अलग अलग थे, परंतु 15 खुर्दाद में राजनीतिक और धार्मिक नेता एक हो गए थे।
पंद्रह खुर्दाद और दूसरे आंदोलनों में एक मूल अंतर यह है कि जब कोई आंदोलन आरंभ होता था तो कुछ दिनों के बाद वो कुछ व्यक्तियों और विदेशी गुटों के हितों की भेंट चढ़ जाता था, परंतु पंद्रह खुर्दाद के आंदोलन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पंद्रह खुर्दाद का जो आंदोलन था वास्तव में उसका आधार इस्लाम धर्म की शिक्षाएँ थीं। इसलिए विदेशी शक्तियां न केवल इसका समर्थन नहीं करती थीं, बल्कि उन्होंने इसे अपने लिए भी खतरा समझा और इसी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने इसके दमन में शाह का साथ दिया। 15 खुर्दाद से पहले जो आंदोलन होते थे वे तेहरान या कुछ दूसरे शहरों तक सीमित होते थे, परंतु 15 खुर्दाद का आंदोलन ईरान के किसी शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि ये समूचे ईरान में फैल गया था।
यद्यपि 15 खुर्दाद का आंदोलन 57 साल पहले हुआ था और विदित में उसे कुचल दिया गया था, परंतु उसकी जो विशेषताएं थीं उसके कारण वो जारी रहा, यहाँ तक कि उसने 2500 साल पुरानी राजशाही सरकार का अंत करके उसे इतिहास का भाग बना दिया और आज पूरे ईरान में वो समस्त समाजों के लिए सीख बन गई। 15 खुर्दाद के आंदोलन की एक विशेषता ये थी कि वो पूरी तरह धार्मिक था, जबकि उससे पहले तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए होने वाले जैसे आंदोलन पूरी तरह धार्मिक नहीं थे। 15 खुर्दाद से पहले होने वाले आंदोलनों के राजनीतिक और धार्मिक नेता अलग अलग होते थे, जबकि 15 खुर्दाद के आंदोलन में ऐसा नहीं था और उसका नेता एक साहसी राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति था और समस्त गुट और लोग भी उसे अपना नेता कहते व समझते थे।
15 खुर्दाद से पहले होने वाले आंदोलन आरंभ में ही या बीच में कुछ लोगों के हितों के कारण अपने लक्ष्यों से हट गए, परंतु 15 खुर्दाद को होने वाला आंदोलन स्वतंत्र रूप से जन आंदोलन और उसका आधार इस्लाम था। 15 खुर्दाद का आंदोलन तानाशाही के खिलाफ इतने व्यापक पैमाने पर होने वाला पहला आंदोलन था जिसमें ईरान की मुसलमान महिलाएँ हिजाब के साथ थीं, और यह आंदोलन पवित्र नगर गुम से आरंभ हुआ था जिसमें बहुत सी ईरानी महिलाएं भी शहीद हुईं। 15 खुर्दाद 1342 हिजरी शमसी में होने वाले आंदोलनों के कुछ परिणाम लघुकालिक जबकि कुछ दीर्घकालिक थे, और उसके परिणामों में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम शाह की तानाशाही सरकार का अंत था।
दोस्तों, रोचक बात यह है कि 15 खुर्दाद के आंदोलन से पहले तक रजा शाह स्वयं को एक मुसलमान व मोमिन व्यक्ति दिखाता हुआ दर्शाता था और कभी कभी वो ये भी कहता था कि उसे गैबी सहायता प्राप्त है, परंतु 15 खुर्दाद के आंदोलन के दौरान उसने अपनी वास्तविकता स्पष्ट कर दी। वो स्वयं को शिया धर्म और शिया मुसलमानों का रक्षक समझता था और इस राष्ट्र के दुश्मनों को शियों का दुश्मन बताता था। जैसा कि उसका पिता रजा खान सत्ता तक पहुंचने के लिए आरंभ में इमामों की पावन समाधियों की जियारत करने और धर्मगुरुओं से मुलाकात के लिए जाता था, यही नहीं रजा खान नंगे पैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शोक सभाओं में भाग लेता था, मगर जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि उसकी सरकार के स्तंभ मजबूत हो गए हैं तो उसने हिजाब करने और मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को मना कर दिया।
1342 हिजरी शमसी में शाह के सुरक्षा कर्मियों ने पवित्र गुम के प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षा केंद्र मदरसे फैजिया पर हमला करके बहुत से धार्मिक छात्रों को शहीद कर दिया। शाह के इस कार्य से उसके चेहरे पर इस्लाम की बड़ी नकाब हट गई और अब ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही जिससे उसके इस कृत्य का औचित्य दर्शाया जा सके। यद्यपि शाह ने इसके बाद दोबारा मस्जिदों का निर्माण और पवित्र कुरान को छपवाना आरंभ कर दिया ताकि दोबारा लोगों में स्वयं को धार्मिक दर्शाएं, परंतु उसके इस पाखंड का कोई नतीजा नहीं रहा और 15 खुरदाद का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व धर्मगुरु कर रहे थे और इस आंदोलन के बाद शाह की तानाशाही सरकार को अवैध सरकार की संज्ञा दी गई और समाज में जो मुश्किलें व समस्याएं थीं उसके लिए शाह को जिम्मेदार बताया गया और पहली बार तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उसके पहले तक कोई शाह पर टीका टिप्पणी करने का साहस नहीं करता था, परंतु इमाम खुमैनी ने 1342 हिजरी शमसी में आशुर के दिन शाह की आलोचना की जिससे शाह की जो धौंस थी वो खत्म हो गई। ये वो चीज़ है जिसे शाह के गुप्तचर सेवा सवाक ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है।
बहरहाल 15 खुरदाद के आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि जनता और लोग अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं और एकजुट रहकर बड़ी से बड़ी तानाशाही सरकार का भी अंत कर सकते हैं। यद्यपि उन सरकारों को दुनिया की वर्चस्ववादी शक्तियों का समर्थन ही क्यों न प्राप्त हो।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने 15 खुरदाद के बारे में एक विशेष कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार हमें अवश्य बताइएगा। इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। खुदा हाफिज।